پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے پانچ عذر جن کی بنیاد پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے اس کا تذکرہ فرمایا، اور ہر طریقے سے اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ سوال اٹھا کر، جس کو سوالیہ انداز کہتے ہیں نا، ام لم افلم یدبر القول، کہیں ام یقولون، یہ انداز شعور کو بیدار کرنے کا ہے. تو اب یہاں کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کی قدر ہمیں کب آتی ہے؟ جب ہم اس کو ایک نعمت سمجھیں، اور اسی نعمت کا حق انسان پھر ادا کرتا ہے اور اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے. تو کچھ آیات میں اب اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے نعمتوں کو پا کر اس کا تذکرہ ہے. فرمایا آیت نمبر 78 سے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی تو ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، لیکن ان عظیم نعمتوں پر بھی تو تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. سبحان اللہ، تین بڑی بڑی نعمتیں، اور ان کا تذکرہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ ایک ساتھ ہی آتا ہے. کہا کبھی غور کیا، تمہاری سماعت کس نے بنائی؟ ہم کہتے ہیں کان، ذرا کان کو بھی دیکھیں اپنے، کتنے کرو ہے اس میں. آپ دیکھیں کہ ہمارا کان جو ہوتا ہے یہ کتنی مختلف کیفیات شو کرتا ہے نا. ہاتھ لگا کے دیکھیں، کان کی جو ہڈی ہے وہ بالکل دوسری ہڈیوں سے مختلف ہوتی ہے، کرکری سی ہوتی ہے. پھر اس کی اندر کی ساخت دیکھ لیں، کسی بھی ڈمی میں، کسی بھی ڈائیگرام میں، ناقابل یقین حد تک سسٹمیٹک کام کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہماری انگلی کی پور ہے نا، یہ جو شہادت کی انگلی، اتنا ہی سوراخ ہوتا ہے ہمارے کان میں. آپ ازما کے دیکھ لیں، بچے کی جتنی پور ہے اتنا ہی یہاں کان کا سوراخ ہوگا. بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا یہ سوراخ اور یہ دونوں ایک جتنی. کیوں؟ کہ اگر خلاف حق کوئی بات کرے تو اسی کو اندر ڈال کے سننے سے انکار کر دو. یہ تو ہے کان، یہاں کانوں کا ذکر نہیں ہے. کان کوزن کہتے ہیں نا، یہاں بات ہے سمع، سماعت. یہ تو انبیلیویبل قسم کی کیفیت ہے. کان تو ہم دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، بتائیں سماعت کیا ہے؟ کبھی سوچے میں بول رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ کیسے ہوا سماعت؟ اب آج سائنس نے بولا کہ میں بول رہی ہوں، میری آواز کی لہریں نکل رہی ہیں، وہ آپ کے کان کے پردوں پہ ٹھک 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 کرتی ہیں، پھر وہاں سے وہ آواز کی کچھ لہریں بنتی ہیں، پھر دماغ کو میسج آ رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے سنو، پھر آپ سنتے ہیں. لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنی ان گنت آوازیں ہم ایک وقت میں سن رہے ہیں. کبھی غور نہیں کرتا انسان کہ یہ سماعت جس نے دی، کیا اس کی بات بھی سنتی ہوں کہ نہیں سنتی؟ کیونکہ آخر میں کہا نا، قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہو جو شکر کرتے ہو، اور تھوڑا ہی ہے جو شکر کرتے ہو. یہ دونوں میں آتا ہے قلیلم ما، یعنی شکر کی مقدار بھی تھوڑی ہے اور جتنا وقت شکر میں لگاتے ہو وہ بھی تھوڑا ہی ہے. ظرف زمان ظرف مکان، بہت تھوڑے شکر کرتے ہو، وقت بھی تھوڑا ہے. اور شکر کیا ہوتا ہے؟ بہترین شکر کیا ہے؟ کہ نعمت کو جس مقصد کے لیے دیا جائے اسی میں استعمال کرنا. مقصد کے حصول کے لیے نعمت کا استعمال شکر کہلاتا ہے، اور اس کی عطا کو اسی کی طرف منسوب کرنا جس نے عطا کیا ہے. ہم بڑائیاں مارتے ہیں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں یہ سن سکتی ہوں، میں یہ دیکھ سکتی ہوں، میری نظر بڑی تیز ہے، میرا دل بڑا مضبوط ہے. کہا کبھی سوچا، ایک لمحہ لگے گا، صرف ایک لمحہ، اور تمہاری آنکھ دیکھنے سے رک جائے گی. ایک فقیر تھا، کہیں صدا لگا رہا تھا کہ غریب فقیر کو کچھ دے دو، بہت ہی رو رہا تھا. ایک عقل مند شخص نے اس کو روکا، کہنے لگا کہ تم بھی کیوں مانگتے ہو؟ کہنے لگا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا تمہیں یقین ہے تمہارے پاس کچھ نہیں؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس نے شدت کا اظہار کیا. کہنے لگا اچھا، ایسا کرو، میں تمہیں 10,000 روپے دیتا ہوں، تم ایسا کرو کہ اپنی آنکھیں مجھے دے دو. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو نہیں دوں گا، میں تو ایک بھی نہیں دوں گا. کہنے لگا اچھا، ایسا کرو کہ 5,000 لے لو، اپنی زبان دے دو. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں دوں گا. کہنے لگا 10,000 لے لو، مجھے اپنے کان دے دو. کرتے کرتے بولی 50,000 تک پہنچ گئی. और वो नहीं माना। तो ये शख्स कहने लगा कि तुम तो सिर्फ अपने वजूद की इन चंद चीज़ों को बेचो, तो 50,000 में तुम नहीं दे रहे, तो तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने अमीर हो। आज भी किसी को एक गुर्दा किसी का लेना पड़े, किसी का मैं पढ़ रही थी रिपोर्ट कि गुर्दा तो किसी ने डोनेट कर दिया, लेकिन उसको सिर्फ लगाने, फिक्स करने और डॉक्टर्स का जो बिल है वही कई लाख का है। कलीलम मा तशकुरून। आप कहते पानी नहीं पीना क्योंकि भी टॉयलेट में जाना पड़ेगा बार बार, कभी आपने सोचा क्यों? पानी यहाँ पिया, टॉयलेट में जाने तक कितने मरहलों से गुजरा? आप तो पी के काम में लग गए या सो गए। कौन सी ताकत है जो इन सारे कामों को कर रही है? फिर भी कलील लम्मा तशकुरून। फिर रुपए पैसे के भागते हो पीछे, फिर इसी दुनिया को सब कुछ समझते हो और अल्लाह की शुक्रगुजारी उसकी कदरदानी थोड़ा करते हो। अल्लाह ताला ये दे के आजमा रहा है तुमको कि तुम इनका क्या इस्तेमाल करते हो। वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दी, और वही तो है जिसने फैला दिया तुमको ज़मीन के अतराफ में। और फिर वह इलैही तुहशरून, और इंजामे कार इसी की जनाब में इकट्ठे किए जाओगे। आप कभी कोई चीज़ फैलाते हैं तो फिर उसको समेटते हैं ना, चादर बिछाते हैं फ्लोर पे खाना खाने के लिए, फिर जब सब खाना खा लेते हैं ना तो आप चारों कोनों से पकड़ के ना उस चादर को इकट्ठा करते हैं और फिर जाके कहीं झाड़ देते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस कायनात के दस्तरखान की सूरत में इस ज़मीन को फैलाया हुआ है, और उस पे इंसान टोलियों की सूरत में, गिरोहों और कबीलों और मुल्कों की सूरत में यूं फैलाए गए। ज़रा ज़ा रो हमज़ा, ज़रा फैलाना, हम सब फैले हुए। और फिर बिलाखिर इलैहि तुहशरून, किस दिन? हशर के दिन, जिस दिन अल्लाह ताला सब को जमा करेगा और कोई उससे छुप नहीं सकेगा। आप देखिए कि दुनिया में, आपको ये एक शादी का मंजर जहन में लाइए, एक लड़की और एक लड़के की शादी होती है। चले लड़की एक और ख़ानदान की है, लड़का दूसरे ख़ानदान का है। बाज़ों का तो पता ही नहीं होता, नाम तक नहीं मिलते, ख़ानदान कल्चर ज़ुबान का फ़र्क होता है। फिर वो दो एक जगह जमा हो जाते हैं, ये हशर हो गया, आप समझे तो शरून, दो मुख्तलिफ ख़ानदान एक ख़ानदान बन गए। फिर एक बच्चा पैदा हुआ, फिर एक साल दो के बाद फिर बच्चा, चार पांच बच्चे हो गए। अब वो 5-6 साल, 10 साल, 12 साल तक फिर एक छत में रहे। कैसा नहीं लगता एक वक्त में बच्चों को, बेटियों को, बहनों को कि हम तो अपने माँ बाप के बगैर रह ही नहीं सकते, भाइयों के बगैर तुम रह ही नहीं सकते। फिर क्या होता है, एक एक करके उड़ते जाते हैं। पहले लड़कियाँ जाती थी शादियाँ करके, अब तो लड़के पहले ही चले जाते हैं। लड़की तो शादी के बाद जाएगी, लड़का तो उससे ही पहले चला जाता है। और जो कल्चर हम देख रहे हैं उसमें मेरी बात लिख के कहीं भी रख लें, अगर अभी यहाँ नहीं आई तो नहीं आई, सिर्फ 10 साल और दे दें, हमारी बच्चियाँ भी शादियों से पहले चली जाएंगी, क्योंकि ऐसी जा रही हैं अभी। ये नहीं खुदा ना सके कहीं भागेंगी, अकेले घर रहती हैं लड़कियाँ। मैं ऐसी बीसियों मिसालें दे सकती हूँ। शादी के बाद लड़की जब कमाने लग जाती है, उसके पास है वह अपना घर लेती है, फिर वो कहती है ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। हालांकि मैं देखती हूँ वो माएँ जो कुछ कहती ही नहीं है, बेचारी मस्कीन, वो तो उनके लिए खाना ही पका के बैठी होती हैं, कब आएगी खाएगी, इतनी भी पाबंदी बर्दाश्त नहीं होती। और फिर लड़कियाँ अलग रहती हैं अपने घरों में, कोई नाराज़गी से नहीं, अपना हक़ समझते हुए फिर वहीं शादियाँ होती हैं। इंसान ज़िंदगी में भी जिस तरह फैल फैल के बिखरता है ना और इकट्ठा होता है, बिलाखिर सारी ज़िंदगी माँ बाप के हाथ इंसान नहीं आता, लेकिन वह इलैही तुहशरून, अल्लाह के सामने तो आना है, फिर वहाँ पेश किए जाओगे। वहुवल्लज़ी युहयी व युमीत, और वही तो है जो ज़िंदा करता है और मरता है, ना तुम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आए न जाओगे। तो फिर अड़ी क्यों करते हो, फिर क्यों करते हो, फिर क्यों मनमानियाँ करते हो? ये चंद साल ही तो हैं बीच में जिनको तुम मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है? कितना इससे तुम्हारा नुकसान होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। वलखुख्ते लाफुल लैली वन नहार, और इसी के इख्तियार में है गर्दिशे लैलो नहार। अफला ताकिलोन, क्या तुम इतना भी नहीं समझते? यानी ज़रा गौर तो करो कि तुम हो क्या, ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, और रात कहाँ से आ गई और दिन कहाँ चला गया। हम गूंगे बहरे बन के काम कर रहे होते हैं दुनिया में, मगन, और कहते हैं हाय फिर रात हो गई, हर जल्दी कर लो, रात हो रही है, घर पहुंचना है, हर जल्दी करो और शॉपिंग कर लो, जल्दी से जाना है। कोई रोक ले रात को? क्या मुश्किल है, आप इतने साहिब इख्तियार हैं, आपके पास इतना पैसा है। आप सूरज को कह दीजिए कि खबरदार ज़रा थोड़ी देर रुक जाओ इधर ही, रोक के तो दिखाएं। आप कहते हैं हाय अभी तो सोए भी नहीं थे तो 2 घंटे की रात ख़त्म हो गई सारी। आप देखते ही हैं ना, गर्मियों में यहाँ रात सिर्फ 2 घंटे की रह जाती है। क्यों नहीं हम सब मिलके, बड़ी बड़ी ताकतें, हुकूमतें, माशाल्लाह हुकूमत यहाँ की भी बहुत अच्छी है पैसे के हिसाब से, उन्हें कहें कि कोई ऐसी तहकीक करवाएं कि गर्मियों में रात कम से कम 2 घंटे से कोई 5-6 घंटे की तो हो जाए, कुछ तो हम सो लें। नहीं, वल्लखुख्तिलाफुल्लैल उसके हाथ में, उसने ये चाबी दी नहीं, किसी को खोले कैसे कोई? तो फिर जब रात और दिन उसके हाथ में है तो फिर बताओ कि तुम्हें किसके हाथ में होना चाहिए? फिर उसने तुम्हें मुख्तलिफ रंग का बनाया, तुम्हारी ज़ुबानें फ़र्क, आदात रस्म व रिवाज फ़र्क, ये सब कुछ कर कर के क्या दिखा रहा है? क्या फला ताकिलून, तुम अक़ल नहीं इस्तेमाल करते कि वो इतनी कुदरत वाला रब सब कुछ कर सकता है? कल हम गाड़ी में थे तो किसी ने खबर दी कि गालिबन ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन कुछ और घूमने लग गई। यदि कोई तो बात करके बताता है ना, तो फिर चूँकि पूरी बात नहीं सुनी होती तो जहन में कई किस्म के तसव्वुर आते हैं ना। तो कल मैं सारा दिन ही सोचती रही, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं देखूं इंटरनेट पे कि क्या हकीकत है, कि ज़मीन की चाल बदली और घूमने लग गई हैं चीज़ें ना, और पानी घूम रहा है। लेकिन मैं सोचती ये रही कि इंसान तू किस खेत की मूली है? आप तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहे होते हैं, एकदम गाड़ी स्पिन करने लग जाए, कौन रोक सकता है? तो क्या कहीं हो सकता है तो यहाँ नहीं हो सकता? अफला ताकिलून, इतने बड़े रब की बातों को मानने के बावजूद धान के पान जिसको कहते हैं, लकीर के फकीर, वही बात कहते रहे जो पहले कहते थे। क्या बल कालू मिसलमा कालल अव्वलून, इसको तो आप मोटा मोटा करके लिखा करें कि बल्कि इन्होंने भी वही बात कही जो इनसे पहले लोग कहा करते थे। क्या कहते थे वो? कालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबं व इज़ामन, क्या जब हम मर जाएंगे और बन जाएंगे मट्टी और हड्डियाँ, इन्ना लमबऊसून, तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे? यानी क्या बात है भाई, तुम्हारा ख्याल है कि हम मर जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे? लक़द वईदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्लु, बिला शुबा ये वादा किया गया हमसे और हमारे बाप दादा से भी आज से पहले, जो आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, नहीं है ये बातें मगर मन घड़त अफसाने पहलों के। अल्लाह अकबर, आप देखिए कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखा रहे हैं, इतने बारीक निज़ाम जो दुनिया में हो रहे हैं वो बता रहे हैं, इनको बताने सुनने पूछने के बावजूद जिनमें अक़ल और फहम की कमी होती है ना, उनकी एक ही रट है कि हम तो अपने बाप दादा वाली ही बात कहेंगे कि मरने के बाद किसी ने ज़िंदा नहीं होना, हड्डी पसली बिखर गई, हमारा गोश्त ख़त्म हो गया, हमारी हड्डियों का सुरमा बन गया, फिर कहते हो क़यामत आएगी। हमारे तो बाप दादा को भी ये खबरें दी जाती रहीं जो आज तक पूरी ना हुई, तो अब कैसे होंगी? मान लो कि ये तो असातीरुल अव्वलीन है, लफ्ज़ असातीर पीछे भी आया, अस्तूरतुन की जमा, और अस्तूरा कहते हैं ऐसी कहानी जो महज दिल बहलाने के लिए लिखी गई हो, झूठी कहानी आप कह लें, अकाजीब, जिनका हकीकत से कोई वास्ता ना हो, जैसे अहादीस से अहदूसा और आजीब से अजूबा, इसी तरह असातीर से अस्तूरा का लफ्ज़ है, बेसरोपा कहानियों को कहते हैं। आपको पता है क्यों कहते थे पुरानी कहानियाँ? ये नबियों के किस्सों से है, हज़रत नूह से बात शुरू होती है, मूसा पे आके ख़त्म होती है, फिर कभी ईसा की भी बातें आती हैं, ये तो पुरानी कहानियाँ चलती जा रही हैं। कहा अच्छा पुरानी है तो चलो फिर तुम जवाब दे दो, अब तो तुम्हें रट जानी चाहिए ना ये चीज़ें। कुल कह दीजिए, लिमन इल अर्दु व मन फीहा इन कुन तुम तालमून, ए हबीब आप पूछिए किसकी मलकियत है ये ज़मीन और जो कुछ इसमें है, बताओ अगर तुम जानते हो। हम ही बता दें किसकी है ये मलकियत। अल्लाह की जात की है। देखिए कुफारे मक्का को अल्लाह के नबी की दावत पर दो बुनियादी एतराजात थे शदीद नौयत के। एक तो ये कि आप ये क्यों कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह एक है और इसके सिवा और कोई नहीं। ठीक है, नहीं हमारे बुजुर्गों की भी बात करो, हमारे बड़ों की भी बात करो। और दूसरा एतराज़ क्या था कि आप ये क्यों कहते हैं कि जी क़यामत आएगी, फिर तुम्हें मरने के बाद ज़िंदा किया जाएगा और दिस एंड दैट। इन दो बातों को मानने के लिए वो हरगिज़ तैयार ना थे और इनकी अक्लें उन चीज़ों को समझने और इन पर ईमान लाने से बिल्कुल आजिज़ थी। इसका तذکرہ कुरान पाक में कई और मुकामात पे भी देखते हैं। एक जगह आता है इन्नहुम कान इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून, जब इन्हें ये कहा जाए कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं तो वो तकब्बुर का इजहार करते हैं और कहते हैं कि हम इस शायर और मजनू के कहने पर अपने खुदाओं को छोड़ दें, हरगिज़ नहीं। इस रटिटाई की बात करते थे। इसी तरह कुरान पाक में एक और जगह आता है गालिबन सूरह स्वात में आता है कि इसने तो बहुत से खुदाओं की जगह बस एक खुदा बना लिया है, ये तो हैरत की बात है, अजीब बात है। और ऐसी बातें कर करके ये अल्लाह के नबी को छुटलाया करते थे। क़यामत की बात का इनकार क्यों करते थे सोचिए? इसलिए कि उसके बाद हिसाब दिया जाएगा। आपसे कहा जाए कि अब आपका इम्तिहान ले लिया जाए 20 पारों का, तो आपको क्या लगे? आप तो कहेंगे लें जी, पता चलेगा ना आपको जब आप पेपर बनाएंगे, पता चलेगा आपको जब आप चेक करेंगे। क्या आप इसलिए इनकार करेंगे? नहीं, आप इसलिए इनकार करते हैं कि फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करनी पड़ेगी, दोहराई करनी पड़ेगी। यही मसला क़यामत के साथ होता है। उनको क्या लगे कि क़यामत के मराहल क्या हैं और क्या कुछ होना है? वो ये कहते थे कि इसके बाद हमारी पकड़ आ जानी है। तभी तो कहते थे हई हा तलीमा तू अदून, हाय बड़ा दूर है, हाय बड़ा दूर है जिसका तुम वादा दिए जाते हो। तो अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि सयकुलून लिल्लाह, कहेंगे बेशक अल्लाह के लिए ये सब कुछ। अच्छा तो कुल अफला तज़क्करून, क्या फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते? यानी ये सारा कुछ ज़मीनों आसमान अल्लाह के कब्ज़े में है, हर चीज़ उसके हुक्म से चलती है, पत्ता भी नहीं गिर सकता, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो क्या गौर नहीं करते? कुल मर रब्बुस समावाति सब्अ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, पूछिए कौन है मालिक 7 आसमानों का और कौन है मालिक अर्श अज़ीम का। अब ज़मीन की चीज़ों पे गौर कराने के बाद आसमान की चीज़ों पे बात हो रही है, हाँ तो जवाब क्या देंगे? सयकुलूना लिल्लाह, अन करीब वो कहेंगे अल्लाह का है भाई, ज़मीन भी उसका आसमान भी उसका। या ऐसी है जैसे आप कहें कि ये घर किसका है, कोई आप में से कहता है कि ये फ़र्श तो मेरे हैं लेकिन छत किसी और की है। हाँ फ्लैट सिस्टम में कहेंगे आप, छत अपनी नहीं है। लेकिन अमूमन देखिए कि दुनिया में ऐसा हो जाता है, दो लोग शेयर कर लेते हैं ऊपर की मंजिल तुम्हारी नीचे की मेरी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस ज़मीन और आसमान में किसी की शेयरिंग नहीं करवाई, तो ख़ुद मानते हैं कि अल्लाह की है। तो कुल अफला तत्तकून, क्या फिर तुम डरते नहीं हो? इतना ओनर है बड़ा, इतनी लैंडलॉर्ड्स, इतना बड़ा लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड नहीं है बल्कि रूफ लॉर्ड भी है, स्काई लॉर्ड भी है, तुम उससे नहीं डरते? कुल मम बियदिही मलकूत कुल्ली शैइन, आप पूछिए वो कौन है जिसके दस्ते कुदरत में हर चीज़ की कामिल मलकियत है। वहुवा युजीरु वला युजारु अलैह, और वो पनाह देता है जिसे चाहे और पनाह नहीं दी जा सकती इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम कुछ इल्म रखते हो, तुम कुछ जानते हो। यहाँ देखिए मलकूत का एक तो लफ्ज़ आया, मलकूत जो है ना ये मुबालगे का सीगा है, इसम मुबालगा है, ये एग्जैजरेशन है। एक लफ्ज़ है मालिक, मालिक यौमिद्दीन, मलकियत, लेकिन जब ये मलकूत के लफ्ज़ में आता है ना तो इसके अंदर एग्जैजरेशन होती है। फिर दूसरा लफ्ज़ है युजीरु और युजार, ये वही लफ्ज़ है जो जौर से है, जवेरिया हमसाए को कहते हैं, जार जारा या जीरु हमसाएगी में होना। अब यहाँ क्या मुराद है कि उसको पनाह नहीं दी जाती वो देता है, मतलब क्या है कि जब अल्लाह किसी को कोई बीमारी दे, जब अल्लाह किसी को किसी मुसीबत में डाले, जब अल्लाह ताला किसी को कोई अजाब में मुबतला करना चाहे, किसी की मजाल नहीं कि उससे निकाल सके। खाएं आप दवाइयाँ, दवा भी असर हो जाती है, करवाएं इलाज। डॉक्टर कहते हैं समझ नहीं आ रही ये गोली आप पे असर क्यों नहीं कर रही। आप ले लें सारी प्रिकॉशंस, जो होना है वो होके रहेगा। आप कहते हैं कि मैंने तो इंजेक्शन भी लगवा लिया, वैक्सीनेशन भी करा ली। आप देखिए जब हमला होना होता है बीमारी का कैसे होता है, जब अल्लाह किसी को पकड़ता है तो वो ही पनाह देता है। ये मफहूम नबी सल्लम की कई दुआओं में हमें मिलता है कि हुवा युजीरु वला युजारु अलैह, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मोतिया लिमा मनात वला यन्फौ ज़ल जद्दी मिन कल जद। जिसको अल्लाह नफ़ा दे उसको ही मिलता है। वहु व युजीरु वला युजारु अलैह, उससे बड़ी इंश्योरेंस किसी की नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो अल्लाह सुभान तआला के नाम है। आऊज़ु बिकलिमाति अल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक। अल्लाह तेरी पनाह में आती हूँ तेरी मखलूक के शर से, क्योंकि मखलूक भी तेरी है, वो तेरा मानती है। सारे सांप तेरी मानते हैं, सारे जिन्नात जिन भूत परियां अगर हैं तो वो तेरा मानती हैं, तो उनको मेरे से दूर रखना। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैयुन वहुवस समीउल अलीम। तो उसकी पनाह में आके देखे। एक दुआ में भी आता है ना, अल्लाहुम्मा ला मलजा मिन का इल्ला इलैक। अल्लाह कोई जगह ही नहीं है छुपने की मगर है तो तेरे पास। जैसे बच्चे को माँ मारे भी ना अगर तो बच्चा माँ ही की गोद में घुसता है, इसी तरह से अल्लाह की पनाह ढूंढे। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरी अनफुसिना, बल्कि नाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरी अनफुसिना। कोई खुतबा नहीं था जो अल्लाह के नबी इन जुमलों के बग़ैर ना शुरू करें कि हम अल्लाह ही की पनाह में आते हैं हमारे नफ्स की बुराइयों से। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन तो हमारा नफ्स है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम कुछ इल्म रखते हो। बताओ भाई कौन देता है पनाह? सयकूलून लिल्लाह, अन करीब कहेंगे जी अल्लाह देता है, ये तो अल्लाह की शान है वो पनाह दे। कहा अच्छा, कुल फअन्ना तुसहरून, फिर तुम किस धोखे में मुब्तला किए जाते हो, किसके सहर में आ चुके हो, किसके मामलात में तुम पर ऐसी बातें हो गई, तुम पे जादू क्यों हुआ? अब यहाँ सहर का लफ्ज़ आया ना, पीछे हम इस पे थोड़ी सी बात कर चुके हैं ना, तो सहर जादू को कहते हैं, झूठ को भी सहर कहते थे। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सहर क्या होता है, कि जिसमें हकीकत नहीं बदलती चीज़ों की, सिर्फ देखने वाले को धोखा होता है, या वक्ती तौर पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर दी जाती हैं कि लगता है कि इस पे कुछ हुआ है, लेकिन जब कोई उसका इलाज कर लिया जाए तो वो ठीक हो जाता है। यहाँ वो जादू है जिसको आप ये कह सकते हैं कि किसकी बातों के जादू में आ गए हो, ये क्या हो रहा है, किस तरीके की बातें कर रहे हो और क्या मामला करते हो, क्या तुम इनकी बातों में आ गए हो, कि क्या वाकई तुम इनकी बातों में लग के अल्लाह की बात को छोड़ते जा रहे हो। बल अतैना हम बिल हक्की, हकीकत ये है कि हम लाए हैं इनके पास हक को, लेकिन वह इन्नहुम लकाज़िबून, लेकिन ये हैं ही झूठे, यकीनन झूठे हैं, इनका कुफर झूठा, इनकी बात झूठी, इनकी हर चीज़ झूठी है। तो खुलासा क्या है इन आखिरी आयतों का, कि सारी बातिल चीज़ों को छोड़ो, बल अतैना हम बिल हक, हक को पकड़ो। यहाँ हक से क्या मुराद है? कुरान, सच। हम आपके पास सच्चा दीन ले आए, सच्ची किताब ले के आ गए, हक पहुंचा दिया आपके पास। आप अगर नहीं मानते तो ना माने, इनके दिल में कुछ इनके बाहर कुछ, तो लिहाजा ये अल्लाह की कुदरत का इनकार करके ही ऐसे काम करते हैं, तो इनको शौक से करने दो, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने तो इनको हक पहुंचा दिया। तो सारे सबक का खुलासा क्या है, कि जो काम अल्लाह कर सकता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो फिर क्यों समझते बूझते अपने आप को इस किस्म का बना के पेश करते हो कि अल्लाह ताला की नज़रों में तुम मुजरिम बन जाओ। और इसे ये बात भी पता चलती है कि हर किस्म की बुराई का जो तोड़ है ना वो हक में है। कुरान ये है वो सच्ची किताब जो लोगों के अंदर से सारी बातिल चीज़ों को, बातिल मोहब्बतों को, बातिल तरीक़ों को लाती हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में रखे और इससे बचा के रखे। बस लोगों ने इन आयात से शिर्क को साबित भी किया है। हैरत की बात है वैसे, जिन बातों से कुरान में शिर्क की तरदीद की जाती है ना, बाज़ लोग उन्हीं से शिर्क की तस्दीक या दलील भी ले लेते हैं। ये जो वहुआ युजीरु वला युजारु अलै और इसी तरह इन कुन तुम तालेमून, बस लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके अंदर ले आते हैं। वो कहते हैं वहुआ, नबी की बना लो। इससे लोगों ने नबी के वसीले से मांगना साबित किया, नबी के बुजुर्गों के कब्रों वालों के तुफैल मांगना जो है साबित किया। तो अल्लाह ताला हमें हक के साथ जोड़ दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।